आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में नई दिल्ली में भारत एआई इंपैक्ट समिट 2026 का किया औपचारिक उद्घाटन। कहा, ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने के लिए सभी के लिए सुलभ हो एआई प्रौद्योगिकी। विधानमंडल के बजट सत्र में आज विधानसभा में सिंचाई कृषि समेत अन्य विभागों की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। विधान परिषद में किसानों के मुद्दे पर सपा ने किया सदन से वॉकआउट। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर भव्य आयोजन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल होंगे शामिल। और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कर्नाटक और उत्तराखंड के बीच रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबला ड्रा। खेल के आखिरी दिन 827 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी उत्तराखंड की टीम ने 6 विकेट खोकर बनाए 260 रन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचार को बढ़ावा देने, समावेशिता को मजबूत करने और मानवीय मूल्यों को समाहित करते हुए एआई भविष्य के निर्माण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एआई प्रौद्योगिकी सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत न केवल नई तकनीकों का विकास कर रहा है बल्कि उन्हें तेजी से अपना भी रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी केंद्र है। उन्होंने कहा कि ये भारत और ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है कि नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है।
इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। दुनिया के कोने कोने से यहाँ आए महानुभाव इसकी सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसमें यंग जनरेशन की जो उपस्थिति हमने देखी है वो एक नया विश्वास पैदा करती है।
प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने नई दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एआई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होना भारत की इसको लेकर गंभीरता को दर्शाता है।
ग्लोबल साउथ की बात करिए या और किसी क्षेत्र की बात करिए, एआई आज ऐसा माध्यम देश और दुनिया में विकल्प के तौर पर तैयार हुआ है जिसको लोग अपनाकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर एआई के महत्वपूर्ण इशू पे कॉन्फ्रेंस होना, चर्चा होना, ये भारत की गंभीरता है, प्रधानमंत्री जी की सजगता है कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के अंदर कॉन्फ्रेंस करके इस एआई की महत्ता को बढ़ाया। और उम्मीद करते हैं कि हमारा देश और दुनिया इस एआई का लाभ लेकर अपने हितों को, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी।
विधानमंडल के बजट सत्र में आज विधानसभा में बजट पर सामान्य चर्चा के साथ ही चार विभागों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा की गई। इनमें उद्योग, सिंचाई, कृषि और नगर विकास विभाग शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने आयुष और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी सदन में पेश की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्र का संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
बहुत कुशलतापूर्वक इस सत्र का संचालन हो रहा है और बजट सत्र है। बजट सत्र में तमाम महत्वपूर्ण विषय आते हैं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी चर्चा, बजट पर चर्चा, विभागीय बजटों को प्रस्तुत करने का काम है। और विभागीय बजट प्रस्तुत करने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि प्रदेश का सभी विभागों के माध्यम से सर्वांगीण विकास हो और हमारी सरकार विकास के लिए समर्पित है, सबके साथ के लिए समर्पित है और हम 25 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए काम करते हैं।
विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया। इस पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों को खाद, बीज, पानी की पर्याप्त सुविधा मिले, जिससे उनकी लागत में कमी आए। वहीं सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी में गंगा नदी में चल रहे सरकारी व प्राइवेट क्रूजों की संख्या और उनके संचालन से जुड़ा सवाल उठाया। जवाब में प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वाराणसी में 5 सरकारी और 2 निजी क्रूज संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनके संचालन से वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।
कि जहां 2017 तक मात्र 5,94,355 भारतीय और 33,03,84,807 पर्यटक आपके वहां आते थे बनारस में, आज की तारीख में 17,27,52,631 पर्यटक आज बनारस में आके न सिर्फ वहां की धार्मिक आस्था का लाभ ले रहे हैं, न सिर्फ पुण्य कमा रहे हैं, बल्कि आपकी इकोनॉमी को बनारस की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम हुआ है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 28 फरवरी तक चलने वाली परीक्षाएं 2 पालियों में संपन्न कराई जा रही हैं। परिषद के सचिव शिवलाल ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 241 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा संचालन के लिए CCTV, वॉइस रिकॉर्डर और DVR युक्त विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी भी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जापान सिटी और सिंगापुर सिटी के विकास को लेकर औपचारिक प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। पत्र में प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को दोनों प्रस्तावित सिटीज के लिए भूमि चिन्हित करने की जानकारी दी गई है। प्राधिकरण के CEO RK सिंह ने बताया, जापान सिटी के लिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5A में 500 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित है। वही सिंगापुर सिटी के लिए ग्रेटर नोएडा सेक्टर 7 में 500 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। इन सेक्टरों का विकास इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC मोड पर किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही एक अन्य कंपनी को अत्याधुनिक हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 5 एकड़ भूमि का आवंटन कर दिया गया है। 400 करोड़ रूपए के निवेश वाले इस डेटा सेंटर की क्षमता लगभग 7,000 सर्वर रैक की होगी। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आगरा किले में शिव जयंती उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से हो रहे इस आयोजन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं। उत्सव में मुख्य आकर्षण शिवाजी महाराज पर आधारित लेजर शो होगा। इसके साथ ही उनके जीवन पर आधारित नाटिका और गौरवशाली गीतों की प्रस्तुति भी होगी। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध होली उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग मथुरा पहुंचते हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने ब्रज क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारियां की हैं। मथुरा परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मदन मोहन शर्मा ने बताया कि रंगोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक सुगमता से पहुंचाने के लिए परिवहन निगम 170 बसों का संचालन करेगा।
इस पर्व के अवसर पर हमने अपनी रोडवेज से 170 बसें लगाई हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की AC और वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें भी हमने लगाई हुई है। हम 125 बसें निगम की मथुरा से बरसाना चलाएंगे, 10 बसें हम कोसी से बरसाना चलाएंगे और 5 बसें हम छाता से बरसाना चलाएंगे और 30 बसें हम वृंदावन से बरसाना चलाएंगे।
लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कर्नाटक और उत्तराखंड के बीच खेला जा रहा रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबला ड्रॉ हो गया है। मैच के आखिरी दिन आज 827 रनों के लक्ष्य को हासिल करने उतरी उत्तराखंड की टीम 6 विकेट पर 260 रन ही बना पाई, जिसके बाद मुकाबले को ड्रॉ घोषित किया गया। पहली पारी में बढ़त के आधार पर कर्नाटक की टीम रणजी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में नई दिल्ली में भारत एआई इंपैक्ट समिट 2026 का किया औपचारिक उद्घाटन। कहा, ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने के लिए सभी के लिए सुलभ हो एआई प्रौद्योगिकी। विधानमंडल के बजट सत्र में आज विधानसभा में सिंचाई कृषि समेत अन्य विभागों की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा। विधान परिषद में किसानों के मुद्दे पर सपा ने किया सदन से वॉकआउट। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर भव्य आयोजन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल होंगे शामिल। और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कर्नाटक और उत्तराखंड के बीच रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबला ड्रॉ। खेल के आखिरी दिन 827 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी उत्तराखंड की टीम ने 6 विकेट खोकर बनाए 260 रन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।